Hey y'all, Darius Rucker here. You know, a lot of people ask me, what inspires your music? And one of the big things is a strong sense of place. That's why I love my home state of South Carolina and want to share the awesome things it has to offer. From the beautiful mountains down to the sunny coast, it's got it all. Not to mention two of my personal favorites, great golf and amazing food. Come see why I love this place. Visit discoversouthcarolina.com.
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi mobile, online और radio पर.
नमस्कार, SBS Hindi सुन रहे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है. आज के प्रोग्राम के लिए मेलबर्न स्टूडियो से लाइव मैं ज्योतिका आपके साथ जुड़ी हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा गया होगा और शाम और भी अच्छी ही होगी. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को. सबसे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजरी और वुइवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर से ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. वही हर रोज की तरह आज के प्रोग्राम में भी सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे ऑस्ट्रेलिया समेत दूसरे देशों की प्रमुख खबरें. इसी के साथ साथ गीत संगीत भी जरूर होगा क्योंकि उसके बिना तो प्रोग्राम अधूरा सा लगता है. तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की प्रस्तुतियों पर. सबसे पहले बात हरिकेन मेलिसा ने इस हफ्ते कैरिबियन क्षेत्र में भयंकर तबाही मचा दी है. इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आप तक लेकर आएंगे. फिर मौसम बदलने के साथ ही कुछ ऐसी एलर्जिक रिएक्शंस एक्टिव हो जाती हैं जो बेहद परेशान करने वाली होती हैं. समझेंगे इन्हें और कैसे इनसे बचा जा सकता है. फिर बात होगी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच एक नए समझौते को लेकर. क्या है ये समझौता और किसके बारे में है इसे जानेंगे. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिपोर्ट आप तक लेकर आएंगे जो दर्शाती है कि ऑस्ट्रेलिया में बसे हिंदू प्रवासी अपने प्राचीन अंतिम संस्कार की परंपराओं को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कैसे निभाते हैं. और हाँ, आप हमें मैसेज करके अपने विचार और अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर बांटिएगा. उसके लिए आपको हमारा नंबर तो पता ही है 0439-799-767. और भाई वैसे भी आजकल तो क्रिकेट का दौर चल रहा है और कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार भी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया. तो जरा फोन उठाइएगा, बताइएगा क्या तैयारी है, क्या आप जा रहे हैं मैच देखने और क्या लगता है भाई क्या होने वाला है मैच में. तो जरूर हमें मैसेज करके अपना फीडबैक और अपने विचार हमारे साथ बांटिएगा. बेसब्री से आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम की और सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें न्यूज फ्लैश के जरिए. नमस्कार, SBS हिंदी की न्यूज रूम में आपका स्वागत है. पेश है अब तक की प्रमुख खबरें. फेडरल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों में लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार संसद में पेश किया है जिससे 1500 पन्नों वाले इस विधेयक की पहली पूरी झलक मिली है. पर्यावरण मंत्री मरे वॉट ने आज नेशनल प्रेस क्लब में संबोधन दिया जबकि ये विधेयक गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क द्वारा पेश किया गया था. सरकार के पर्यावरण कानून सुधार विधेयक की तीव्र और व्यापक आलोचना हो रही है. ये विधेयक निचले सदन से पारित होने के बाद एक संक्षिप्त सीनेट जांच का विषय बनने की उम्मीद है. ग्रीन्स पार्टी का कहना है कि ये कानून संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाता, जबकि कोएलिशन यानी गठबंधन का कहना है कि पर्यावरण पर अस्वीकार्य प्रभावों से संबंधित प्रावधानों के कारण व्यापार को खतरा पैदा हो रहा है. विपक्ष का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित नई पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को दिए जाने वाले अधिकार बहुत व्यापक होंगे और इससे व्यापार व उत्पादकता को नुकसान पहुंचने का खतरा है. शैडो पर्यावरण मंत्री एनजी बेल का कहना है कि मंत्री के विवेकाधीन अधिकार इस नए वैधानिक निकाय द्वारा कमजोर हो जाएंगे और वर्तमान स्वरूप में ये विधेयक व्यावहारिक नहीं है. वरिष्ठ ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने अगले महीने से लागू होने वाले वृद्ध देखभाल क्षेत्र के बड़े सुधारों की तैयारी करते हुए हजारों अतिरिक्त होम केयर स्थानों का लाभ उठाया है. एज केयर मंत्री सैम रे ने कहा कि आज यानी 30 अक्टूबर तक सभी 20,000 पैकेज आवंटित कर दिए गए हैं. स्वतंत्र सीनेटर लिडिया थॉर्प ने एक याचिका पेश की है जिस पर 4 लाख से अधिक हस्ताक्षर हैं और जिसमें मेलबर्न में अगस्त में एबोरिजिनल कैंप सॉवरेनिटी पर हुए हमले की पूरी जांच की मांग की गई है। सीबीडी के पास स्थित एक पवित्र स्थल पर काले कपड़े पहने एक समूह ने इस पर हमला किया था जिसमें कई स्वयंभू नियोनाजी भी शामिल थे। ये हमला आयोजित हुई एंटी इमिग्रेशन रैलियों के खत्म होने के बाद हुआ। खबरों के मुताबिक रविवार यानी 26 अक्टूबर को सूडान के अर्धसैनिक बलों द्वारा दारफूर के एल फशर शहर पर कब्जा करने के बाद सैकड़ों लोगों जिनमें अस्पताल के मरीज भी शामिल हैं की हत्या कर दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि सऊदी मैटरनिटी अस्पताल में 460 लोगों की मौत हुई जहां मरीजों और उनके परिजनों पर हमला किया गया। इस हिंसा की संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजारिक ने निंदा की है। गाजा सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार हालिया इजरायली हमलों में 100 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसके बाद ग्रीन्स पार्टी सरकार से आग्रह कर रही है कि वह गाजा में मीडिया की पहुंच पर लगे प्रतिबंध को लेकर इजरायल पर दबाव डाले। इजरायल ने ये आरोप लगाते हुए संघर्ष विराम निलंबित कर हमले शुरू किए कि हमास ने एक सैनिक की हत्या की है। हालांकि फिलिस्तीनी संगठन ने इस आरोप से इनकार किया है और बदले में इजरायल पर कम से कम 125 बार संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। खबरें भारत से। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर जारी तकरार अब थमने की ओर बढ़ रही है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका संकेत दे दिया है। उन्होंने बुधवार को अपनी एशिया यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया के ग्यांगजू में आयोजित एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग CEO समिट में भारत के साथ एक ट्रेड डील पर काम जारी होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में इसी तरह के समझौतों पर काम कर रहा है ताकि रिश्तों को पारस्परिकता के आधार पर संतुलित किया जा सके। ट्रंप ने मलेशिया, कंबोडिया और जापान के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपने गहरे सम्मान और प्यार का इजहार किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा आखिरकार पूरी होती नजर आ रही है। पिछले दिनों रशिया की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब भारत की 2 ऊर्जा कंपनियों ने भी रशिया से तेल की खरीद बंद कर दी है। इसमें एक सरकारी तेल कंपनी भी शामिल है। इन दोनों कंपनियों का कहना है कि तेल खरीद बंद करने का फैसला हालिया प्रतिबंधों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास है। इससे पहले चाइना की कई कंपनियों ने भी रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। आप बने रहिए और जुड़े रहिए SBS हिंदी के साथ। खबरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं हमारी अगली रिपोर्ट के बारे में। हरिकेन मेलिसा ने इस हफ्ते कैरिबियन क्षेत्र में भयंकर तबाही मचा दी है जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है और अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में इमरजेंसी लागू होने के साथ जमैका को सैकड़ों मिलियन डॉलर तक का नुकसान पहुंच सकता है। स्थिति का पूरा ब्यौरा लेकर आ रही हैं हमारी साथी भव्या पांडे।
नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं भव्या पांडे के साथ और इस अंश में हम कैरेबियन में आए एक भारी तूफान की जानकारी आप तक लेकर आएंगे। हरिकेन मेलिसा ने इस हफ्ते कैरेबियन में तबाही मचा दी है। आपको बता दूं कि इस तूफान ने पहले जमैका को तबाह किया था और अब ये तेजी से क्यूबा की तरफ फैल गया है। इस तूफान के कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं, बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई है और पूरा देश मदद की गुहार लगा रहा है। इस तूफान के चलते जमैका, हेती और क्यूबा में कम से कम 27 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और शुरुआती अनुमानों के अनुसार करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है। हरिकेन मेलिसा पहली बार सीरीज 5 के तूफान के रूप में लगभग 295 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर आया था, जो जमैका द्वीप पर अब तक का सबसे तेज तूफान है। ये तूफान अपने साथ विनाशकारी बाढ़, तेज लहरें और भूस्खलन लेकर आया है। मोंटेगो बे के कैथरीन हॉल इलाके की 31 वर्षीय गैब्रियल अपने भयभीत अनुभवों को याद करते हुए बताती हैं।
Yesterday was horrible, horrific, terrifying, the worst day of my entire life, the worst experience of my entire life. To see my place being flooded out, it was terrifying for me and my child. The water level reached me to my waist. I was stuck in my house. They had to break into my home to save me.
सेंट एलिजाबेथ इलाके की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और लगभग 70% बिजली उपभोक्ता बिना बिजली के रह रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय निर्माण एजेंसी का कहना है कि दक्षिणी तट पर पुल और सड़कें अब भी दुर्गम बनी हुई हैं, जबकि आपातकालीन दल अलग थलग पड़े समुदायों तक पहुंचने के लिए संघर्ष में है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे 33 वर्षीय साशा हैमिल्टन ने इस मुसीबत के समय किस किस तरह से बाढ़ से बचाव किया।
Yesterday was absolutely catastrophic and life-threatening. We were totally inundated. The entire ground floors of all the houses in Catherine Hall and West Green have been flooded. Major asset loss to vehicles, furnitures. We had to do rescue. Right now I have 3 children in my home that we rescued. We had to give them shelter, food and clothing and everything. And we had to rescue like old people and stuff like that. And we are literally desperate for some help at this point.
आपको बता दूं कि जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हेलनोस ने कई इलाकों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है और इस तूफान को अब तक की सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक आपदा बताया गया है। उन्होंने कहा है कि बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए जमैका रक्षा बल को तैनात किया गया है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मेलिसा की विस्फोटक शक्ति असामान्य रूप से गर्म कैरिबियाई जल और धीमी गति के कारण थी, जिससे इसे कई दिनों तक ऊर्जा प्राप्त करने में मदद मिली, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा ही एक पैटर्न है। जहां ये तूफान अभी भी खत्म नहीं हुआ था, जमैका को तबाह करने के बाद मेलिसा ने पूर्वी क्यूबा को प्रभावित किया। प्रभावित करने से पहले ये तूफान जरा कमजोर होकर सीरीज 3 के तूफान में बदल चुका था, जिसकी हवाएं लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थीं। फिर भी क्यूबा के अधिकारियों ने बताया है कि तूफान के आने से पहले कम से कम 7,35,000 लोगों को ऐसे क्षेत्रों से निकाल दिया गया है जहां बाढ़ आने का खतरा ज्यादा है। सेंटियागो डे क्यूबा निवासी कि उनके इलाके में निवासी मलबे का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें गिरे हुए पेड़, बिजली की लाइनें और टूटी हुई छतें शामिल हैं।
We were very shocked and apprehensive, but it passed. There was a lot of wind, a lot of rain. This area was flooded. Where you see now, the water reached almost knee high, but the structures held up well because we prepared with plenty of time.
Antonio Corizo इसी क्षेत्र में रहने वाले एक निवासी हैं। वे बताते हैं कि किस तरह इस तूफान से उनके घर को भी भारी नुकसान हुआ है।
The impact was brutal. First, there was a strange calm. Then, suddenly it roared like a wild beast. I had to run for cover. There was nothing I could do. The roof was completely torn off, even though it was well secured.
आपको बता दूं कि ये तूफान अब बहामास और संभवतः बरमूडा की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अमरीकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के पूर्वानुमानकर्ताओं को इसके और कमजोर होने की आशंका है। साथ ही अधिकारियों ने जानलेवा बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी दी है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। जमैका में संयुक्त राष्ट्र के रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर डेनिस जुलू का कहना है कि बाढ़ के बाद सफाई का काम लंबे समय तक चल सकता है।
From what we know thus far, there's been tremendous unprecedented devastation of infrastructure, of property, roads, network connectivity, energy has been lost across its path. What we are seeing in preliminary assessments is a country that's been devastated to levels never seen before.
जहां कैरिबियाई द्वीप अपने नुकसान का आकलन कर रहा है, फिलहाल हवाई अड्डे बंद हैं। इसी के साथ दूरसंचार सेवाएं ठप हो गई हैं और बाढ़ के कारण राहत कार्य बाधित हो रहा है। जहां अटलांटिक तूफान के मौसम के आने में अभी कई हफ्ते बाकी हैं, मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मेलिसा इस साल का आखिरी बड़ा तूफान नहीं हो सकता। इसी बीच डेनिस जुलू का कहना है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनिसेफ और कैरिकॉम राज्यों की सहायता से बारबाडोस, ट्रिनिडाड और टोबैगो के केंद्रों से राहत कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं।
And immediately some of the actions that will be taken is really around life support initiatives or life sustaining initiatives, making available water, food and other resources that immediately in need by the people been affected. We're also working with government to try and support the shipment of vital supplies from our hubs in Barbados. So there's quite a lot of work going around shipping supplies from Barbados as well as shipping into the country. Several specialists who might be needed to support the response effort.
SBS News के लिए Assam Al Ghalib की इस खबर को SBS Hindi में आप तक लेकर आई भव्या पांडे।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए SBS हिंदी मेरे यानी कि ज्योतिका के साथ।
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मेरे यानी कि ज्योतिका के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया समझौता किया है जिसका उद्देश्य दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और अन्य अहम खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करना है। ट्रंप प्रशासन का लक्ष्य इस कदम के जरिए चाइना पर निर्भरता कम करना है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के मुताबिक ये 13 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की डील देश की खनन और प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ावा देगी। आइए जानते हैं क्या है ये समझौता और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने व्हाइट हाउस में 13.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ धातुओं की सप्लाई को सुरक्षित करना है। दोनों देशों ने निवेश और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है ताकि चाइना पर निर्भरता कम की जा सके। ये दोनों नेताओं की व्हाइट हाउस में पहली आमने सामने मुलाकात थी।
This is an $8.5 billion pipeline that we have ready to go.
That's right. It's all ready to go.
Just getting started.
And we're doing a real job on rare earth.
ये मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहनों, हवाई जहाजों और सैन्य तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल इन संसाधनों पर चाइना का सबसे अधिक नियंत्रण है जिसे अमेरिका घटाना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि इस डील को लेकर पिछले 4 से 5 महीनों से बात चल रही थी। दोनों देशों के बीच में हुए इस महत्वपूर्ण खनिजों के समझौते से प्रभाव ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के शेयर बाजार में तेजी आई। ऑस्ट्रेलिया का खनन क्षेत्र इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद अब जश्न मना रहा है। बताया जा रहा है राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के भू राजनीतिक प्रतिबंधी चाइना के एक उपयुक्त विकल्प के रूप में देखा है जो लंबे समय से वैश्विक रेयर अर्थ निर्यात पर हावी रहा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे बड़े महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार का घर है जिनका खनन यहाँ होता है, लेकिन अधिकांश निर्यात और प्रसंस्करण चाइना में ही किया जाता है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के 90% को निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया की खनिज परिषद की CEO Tanya Constable ने इस समझौते को एक सफलता बताया।
It's important that no single country has a monopoly on all of the minerals that are required for everyday use. So this sort of announcement is important to meet a number of countries' needs, and Australia is central to that.
लेबर पार्टी ने अप्रैल में एक महत्वपूर्ण खनिज भंडार की घोषणा की थी और तब से लेबर पार्टी खनिज क्षेत्र से बातचीत कर रही है ताकि न्यूनतम मूल्य तय किया जा सके ताकि कंपनियों को नुकसान न हो अगर वे ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट निर्यात साझेदार चाइना के बजाय अमेरिका के लिए उत्पाद अलग रखती है। तानिया कांस्टेबल बताती हैं।
ऑस्ट्रेलिया इज इनक्रेडिबली गुड एट माइनिंग बट वी आर वन पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन वी कांट डू इट बाय आवरसेल्व्स द यूनाइटेड स्टेट्स इज इनक्रेडिबली गुड एट मैन्युफैक्चरिंग सो वी नीड टू वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दैट देयर इज अ सिक्योर सप्लाई चेन सो दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स टू मीट देयर नीड्स।
तो ये खनिज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इन महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग स्मार्टफोन से लेकर हथियार बनाने, इलेक्ट्रिक कारें और यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज में किया जाता है। इस नए समझौते के तहत अगले 6 महीनों में $5 बिलियन का निवेश होगा जिससे परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू होगी। इस ऐतिहासिक समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा,
In about a year from now, we'll have so much critical mineral and rare earths that you won't know what to do with them. They'll be worth about $2. But in the meantime, we're working with Australia and other countries. They're working with us, too, but other countries also on that. But we're really working on anything having to do with military protection, military ships, vehicles, guns, ammunition, everything.
इस समझौते को लेकर हमने बात की है प्रोफेसर मोहन येलेशेट्टी से, जो मोनाश यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं और कहाँ इनका उपयोग होता है।
क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, जो अपने डेली यूज में काफी भागीदारी होती है उनका। अभी आप देखो मोबाइल फोन, अभी जो मीडियम से हम आपस में बात कर रहे हैं, आप यू नो किसी और जगह है, मैं क्लेटन में हूँ, आप शायद सिटी में है
जी,
तो हम दोनों बात कर पा रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये सभी टेक्नोलॉजीज मिनरल्स और मेटल्स काफी यूज होते हैं उसमें। सभी स्ट्रक्चर्स, सभी यू नो इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर्स, इन सब में मेटल्स की काफी जरूरत होते हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड और सिल्वर भी
जी।
तो इनका क्या हो गया ना, अभी ये सप्लाई चेन्स काफी कंस्ट्रेंट हो गया, क्योंकि इनका ज्यादातर परसेंटेज ऑफ यू नो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ये एक ही जगह होने लगा, वो चाइना में होने लगा। और चाइना में इसलिए होने लगा क्योंकि पूरा दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग चाइना में कॉन्सेंट्रेटेड थे अंटिल लास्ट 10 ईयर्स अगो। ओनली वर्ल्ड वोक अप कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी कोविड के समय आपने देखा होगा कि कोविड चाइना में हो गया तो सप्लाई चेन्स काफी डिसरप्ट हो गए थे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसको सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत मिनरल एंड माइनिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट देना था, वो वैसे ही चाइना ने लॉन्ग विजन के साथ उसमें इन्वेस्ट किया था, तो इसलिए ये क्रिटिकल मिनरल्स बन गए हैं। और इनका महत्व तो इतना है आज की टेक्नोलॉजीज में, विदाउट इनके जो मेटल्स है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो बात कर रहे थे हम, बिना उसकी कुछ काम नहीं चलेगा, इतना हम निर्भर हो गए थे उनके ऊपर। सो इसको हम क्रिटिकल मिनरल्स करके कहलाते हैं।
तो मोहन, जो ये मल्टी बिलियन डॉलर की जो ये डील हुई है ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच, इसको आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या असेसमेंट है जब आप इस डील को देखते हैं?
अभी कंपटीशन हो गया चाइना और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिटिकल मिनरल्स में, क्योंकि अभी जो रेयर अर्थ के बात में पहले भी कहा था ना, रेयर अर्थ का जो माइनिंग होता है चाइना में 60% और उसका प्रोसेसिंग होता है 90% और
चाइना में
80% प्रोसेसिंग होता है। और अभी मैग्नेट्स जो होते हैं, हर जो मूविंग पार्ट होते हैं ना, उसमें मैग्नेट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एलिवेटर पे हो, एस्केलेटर पे हो, कुछ घूम रहे हैं, यू नो विंड मिल देखो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार देखो, इन सब में मोटर्स होते हैं। ये मोटर्स में ना रेयर अर्थ मैग्नेट बेस्ड मोटर्स होते हैं, उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स करते हैं। तो अभी क्या हो गया, सबको चाहिए, और इसके अलावा अभी सबको नेट जीरो टारगेट्स भी अचीव करना है। थोड़े कंट्रीज 2050 तक करने के लिए सोच रहे हैं, थोड़े कंट्री, अभी भारत ने तो 2070 तक वो नेट जीरो अचीव करने के लिए एक टारगेट रखी है
जी।
तो अभी क्या हो गया, सब 90% ऑफ दी सप्लाईज आर चाइना में कॉन्सेंट्रेट है और सबको चाहिए। तो अभी सब लोगों ने एक एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि इसका कैसा सक्षम हो हम, मतलब आगे जाकर दूसरे देश के ऊपर ज्यादा निर्भर होने से ना हमको वो रिस्क होते हैं, मतलब वो सप्लाई नहीं किया तो अपने पूरा इंडस्ट्री तबाह होते हैं
जी।
तो उससे बाहर आने के लिए अभी सभी ने अपने अपने सॉवरेन कैपेबिलिटीज को कैपेबिलिटीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर इनको कहाँ से सोर्स किया जाए करके अभी सोच रहे, इसी को मद्देनजर रखते हुए है। अभी ऑस्ट्रेलिया हाल ही में अमेरिका के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है।
तो मोहन, ट्रम्प के अनुसार ये समझौता चाइना पे निर्भरता कम करने के लिए किया गया है, इसे चाइना किस प्रकार देखेगा?
हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, आप एक बिजनेसमैन है और बिजनेस वुमेन है, तो यू आर ए बिजनेस पर्सन, सो यू आर प्रोड्यूस, यू हैव एन इंडस्ट्री एंड यू हैव लिटरली ए मोनोपोली एंड यू डोंट वांट टू गिव अप, राइट? यू वांट टू कंटिन्यू टू एंजॉय दैट मोनोपोली सो दैट नो वन विल स्टैंड बिफोर यू
जी।
तो कोशिश आपका यही रहेगा कि कोई और आपका आपके सामने खड़ा नहीं रहना है. सो ये तो शायद कोशिश चाइना भी करते रहेंगे एंड वो किया भी इन द पास्ट आल्सो चाइना ने ऐसे ही करते रहा. तो अभी देखना पड़ेगा चाइना कैसा रिएक्ट करेगा ये पूरे मुद्दे के ऊपर. बट बिकॉज दे उसके पास इतना मार्केट पावर है दे कैन स्टिल डिक्टेट टर्म्स एटलीस्ट अंटिल द वेस्टर्न कंट्रीज विल कम अप टू यू नो दैट लेवल ऑफ प्रोडक्शन दैट इट डिमांड्स. तो उस समय तक तो हम चाइना के ऊपर निर्भर होना ही चाहिए विच अगेन टू मी एटलीस्ट अनदर 2-3 years एज फार रेयर अर्थ्स आर कंसर्न्ड. बट अलग अलग मेटल्स में अलग अलग टाइम लेंस है. तो उस समय तक शायद हम चाइना के साथ थोड़ी अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए. बाद में तो मार्केट एक बार स्टेबिलाइज हो गया तो शायद चाइना उतना कुछ नहीं कर पाएगा.
बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी हमसे आज जुड़ने के लिए और हमें इस समझौते के बारे में जानकारी देने के लिए.
बारी एक छोटे से ब्रेक की. ब्रेक के उस पार मिलते हैं. ब्रेक से आने के बाद बात होगी इस मौसम में कुछ एक एलर्जीज. एक आम सी बात है. क्या है ये एलर्जीज और किस तरह से हम अपना ध्यान रख सकते हैं इस पर बात करेंगे. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जुड़े रहिएगा और सुनते रहिए SBS हिंदी ज्योतिका के साथ.
sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योतिका. और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. अब बात कर लेते हैं इस मौसम के साथ जो बदलाव आते हैं उनके बारे में. ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम एलर्जी संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं हैं हे फीवर या फिर मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस और संभावना है कि आप या आपका कोई भी करीबी इससे प्रभावित हो सकता है. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में आइए बात करते हैं इसी विषय पर और प्रस्तुत कर रही हैं हमारी साथी अनीता बरार.
आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है.
बसंत ऋतु नई जिंदगी लेकर आती है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पॉलन के मौसम की शुरुआत भी है. इससे होने वाली एलर्जी को नियंत्रित करना सीखना आपके और आपके परिवार के लिए आवश्यक है. ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में बात इसी पर और मैं हूँ अनीता बरार. आपकी आंखों में खुजली नाक का बहना और लगातार छींके आना ये है हे फीवर या मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस. और अगर पॉलन आपके फेफड़ों तक पहुंच गया तो ये एलर्जी से होने वाले अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है. ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे आम एलर्जी संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हैं और संभावना है कि आप या आपका कोई करीबी इससे प्रभावित भी हो. इसके बारे में और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर जॉय ली जो रेस्पिरेटरी एंड एलर्जी फिजिशियन और नेशनल एलर्जी सेंटर ऑफ एक्सलेंस में रेस्पिरेटरी एलर्जी स्ट्रीम में सह अध्यक्ष हैं.
Grass pollen is a major cause of allergic rhinitis, also known as hay fever, and seasonal allergic asthma. So together these are known as respiratory allergies. Respiratory allergy is actually the most common allergic problem in Australia. About a quarter of the Australian population can be said to be affected by hay fever, and about 10%, nearly like 3 million, will have asthma. And also the two often coexist. So if you have one, you have a high risk of having the other.
प्रोफेसर ली बताती हैं कि राई ग्रास से निकलने वाला परागकण यानी पोलन ऑस्ट्रेलिया में विशेष रूप से दक्षिण पूर्वी राज्यों विक्टोरिया न्यू साउथ वेल्स और ACT में एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर का एक मुख्य कारण है.
It's an introduced grass, so it tends to be these introduced grasses that are more the issue rather than native grasses. And that starts pollinating in September, October, peaking in November, with the end of the season coming towards December and January. Other parts of Australia, like Queensland, for example, there may be more tropical grasses and they may have later seasons, so they might go into the summer, like January, February, March.
अगर आपको hay fever होता है तो इसका अर्थ है कि आपका immune system, जो आम तौर पर आपको बीमारियों से बचाता है, वो pollen पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है और ये आपके नाक, आंखों या श्वास नली में सूजन पैदा कर देता है.
So when it's in contact with the eyes and nose, for example, that triggers the symptoms of hay fever, what we call inflammation, which is like a release of different chemicals from cells, which causes things like swelling, itching. If we inhale it lower into our respiratory systems, and then you get inflammation in the airways and the lungs, and then you get your symptoms of asthma.
अगर आप hay fever और बसंत ऋतु में होने वाली एलर्जी को लेकर चिंतित हैं, तो आपके स्थानीय जीपी या फार्मासिस्ट जैसे हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना सबसे अच्छा विकल्प है. डॉक्टर डंकन मैकिनन रीजनल न्यू साउथ वेल्स में एक जीपी हैं. उनका कहना है कि वसंत और गर्मियों के दौरान उनके क्लिनिक पर लगभग एक चौथाई लोग हे फीवर और एलर्जी से होने वाले अस्थमा जैसी समस्याओं के होते हैं.
The important thing to do is teach people, give them the information so that they can manage these conditions themselves. And if you teach them how to help themselves, how to avoid it and what to treat it with, and most of this is treated with over-the-counter medications. And I think the most important thing with asthma is that if you have a cough, you're wheezing and you find it difficult to catch your breath, and it's the first time this has happened, you need to seek medical advice.
Antihistamine or nasal spray jaisi over-the-counter dawaein aapke sthaniye pharmacy par uplabdh hain aur hay fever ke kuch samanya lakshanon se rahat dilane mein madad kar sakti hain. Halanki dhyan rakhna aavashyak hai ki lakshanon ki shuruaat ko kaise kam kiya jaye ya roka jaye, sath hi jo lakshan viksit hote hain unse राहत कैसे पाई जाए. निवारक उपचारों के संदर्भ में आपका डॉक्टर कभी कभी एलर्जी जन्य सूजन के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड दवा की सिफारिश कर सकता है, जैसे कि हे फीवर के लिए इंट्रानेजल कार्डियोकोस्टेरॉइड या एलर्जी प्रेरित अस्थमा के लिए इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड.
रियल मैनेजमेंट ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी वेरी लाइट स्टेरॉइड्स इन अ नेजल स्प्रे or an oral spray that we might choose to use. If you use a steroid, it takes a week to start to work because they're very low dose, but you need to start taking it now so that in a week's time, you're not suffering from the same problem.
Professor Lee ne bhi yahi salah dohrai ki lakshanon ki gambhirta ke aadhar par allergy ke liye vibhinn tarah ke naidanik parikshan aur upchar uplabdh hain. Professor Lee ka kehna hai ki hawa mein pollen ki matra rojana badalti hai. पोलन काउंट और फोरकास्ट रिसोर्सेस ऑनलाइन और मोबाइल फोन ऐप के जरिए उपलब्ध ही हैं, तो आपको पहले से ही जानकारी है और एहतियात किए जा सकते हैं.
So they can help predict if it's going to be a very bad pollen day. So often it gets graded like mild, moderate, severe, extreme. So if you know it's going to be an extreme pollen day and you're susceptible to that, probably want to try and make plans to not be outside too much on that day.
वसंत ऋतु में एलर्जी के मौसम के दौरान कुछ विशेष मौसम संबंधित घटनाओं के बारे में भी सचेत रहना चाहिए, जिसमें थंडर स्टॉर्म अस्थमा शामिल है, जब उच्च पोलन वाले दिन आंधी तूफान आता है. इन मौसम की घटनाओं के दौरान एलर्जी और अस्थमा के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए डॉक्टर मैकिनन ने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने, बाहर जाने से बचने की सलाह दी है, और यदि आपको बाहर जाना ही पड़े तो धूप का चश्मा और फेस मास्क पहनने पर विचार करें.
In terms of asthma, which can be life-threatening, it's really important that the diagnosis is made and that you become familiar with the treatment strategies. If you're finding it difficult to breathe, really difficult to breathe, you call an ambulance. But if you are finding it difficult to breathe, you can go to an urgent care clinic, you can go to your GP, or you can go to your hospital.
Professor Lee ka kehna hai ki vasant ritu mein hone wali allergy ke liye taiyar rehne ka matlab ek management plan banana hai.
Ye ek SBS audio podcast tha. Australia Explained ke aur dusre podcasts ke liye sbs.com.au/australiaexplained par jaye.
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के उस पार मिलते हैं. सुनते रहिए SBS हिंदी.
अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी
ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
स्वागत स्वागत, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और आइए अब अपनी आखिरी प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बसे हिंदू प्रवासी अपने प्राचीन अंतिम संस्कार की परंपराओं को ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर कैसे निभाते हैं, क्या यहां इस प्रक्रिया को सही तरह से करने के लिए माध्यम एवं सहायता उपलब्ध है, क्या नई पीढ़ी पारंपरिक देह संस्कार की रीत को छोड़कर सरल पश्चिमी या फिर आधुनिक तरीके अपना रही है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढती है ये प्रस्तुति। एसबीएस हिंदी ने हिंदू पुजारी आचार्य रामी शिवन से बातचीत की, जो ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ हिंदू क्लर्जी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। उन्होंने हमें यहां मृत्यु साक्षरता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी और मृत्यु व शोक के विषयों को अधिक समझ, संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
आखिर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हिंदू प्रवासी अपने पारंपरिक अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को किस तरह से निभा रहे हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य शिवन। आचार्य शिवन ऑस्ट्रेलियन काउंसिल ऑफ हिंदू क्लर्गी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और वर्तमान में इसके जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कई हिंदू मंदिरों के प्रतिष्ठा समारोहों में भाग लिया है, अन्य पुजारियों को शिक्षित किया है और हिंदू विषयों पर कई पुस्तकों के लेखक भी रह चुके हैं। 1982 में वे ऑस्ट्रेलिया आए थे और तब से 40 वर्षों से अधिक समय से हिंदू पुजारी व योग वेदांत शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले आज आपका एसबीएस हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो हिंदू प्रवासी हैं या हिंदू समुदाय है, वो अपने पारंपरिक अंतिम संस्कारों को यहाँ किस तरह से निभा रहे हैं।
यहाँ बहुत आसानी और सुविधा से कर सकते हैं, परंतु एक ही भेद है कि ओपन फ्यूनरल पायर्स यहाँ नहीं होता है
जी।
तो हम कंपल्सिवली हम क्रेमेटोरियम्स को यूज करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस पर चलते हैं, और उसके अलावा हम जो रीति रिवाज और जो अंतिम संस्कार के पूजन हवन वगैरह जो हम करते हैं वो कर सकते हैं। परंतु सम प्लेसेस चैपल्स के अंदर अग्नि को मना करते हैं, तो हमने क्या किया, कुछ सालों पहले हमने गवर्नमेंट को लॉबी किया है और हमारे लिए एक मंडप, फ्यूनरल मंडप बनाया मैक्वारी पार्क क्रेमेटोरियम में
जी।
जो लोटस पवेलियन कहते हैं, तो वो विशेष रूप से गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनवाया
जी। जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऑस्ट्रेलिया में किसी भी व्यक्ति के निधन के बाद संस्कारों के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है और किस तरह के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशंस की आवश्यकता इस पूरी प्रक्रिया में होती है।
ओके, डॉक्यूमेंटेशन तो रेगुलर डॉक्यूमेंटेशंस है जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, और विशेष रूप से हमारे लिए क्रिमेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, क्योंकि दफन करने के बाद अगर कोई मामला होता है तो एग्जुमेशन कर सकते हैं, परंतु दाह संस्कार जो है वो बिल्कुल अंत है और बाद में कुछ तलाश नहीं कर सकते हैं।
जी, आपने जिस तरह से बताया कि एक ऐसा स्थल आप लोगों ने बनवाया सरकार की सहायता लेके, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जो हिंदू रीति से अंत्येष्टि होती है उसके लिए शमशान या ऐसे और भी धार्मिक स्थल उपलब्ध हैं, या ये एक ही जगह है जहां पर जाकर आप ये कर सकते हैं?
नहीं, हम केवल रेगुलर क्रेमेटोरियम्स को यूज करते हैं
जी।
जैसे दो प्रकार का है, एक गवर्नमेंट का है और एक प्राइवेट क्रेमेटोरियम्स है। प्राइवेट क्रेमेटोरियम्स जो है दे आर मैनेज्ड बाय इन्वोकेयर, जो एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी है। और फर्क यही है कि वो जरा एक्सपेंसिव है, महंगा है।
आचार्य जी, भारतीय संस्कृति में अस्थि विसर्जन की विशेष भूमिका होती है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या विकल्प मौजूद हैं? क्योंकि भारत में हम अक्सर नदियों में या उसमें हम उसको बहा सकते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से ये किया जाता है?
यहाँ अस्थि जो है उसको भस्म करा देते हैं क्रेमेटोरियम में, तो वो भस्म जो है हम किसी भी नदी में प्रवाह कर सकते हैं कानून के अनुसार, इसमें कोई एतराज नहीं है। तो सिडनी में हम या निपियन रिवर या परमेटर रिवर में भी प्रवाह करते हैं, और सिडनी में एक विशेष बंदोबस्त है कि वाटर टैक्सीज को will take you into the center of the harbor, और वहाँ हाब के बीच में प्रवाह कर सकते हैं।
आचार्य जी, आज हम डेथ लिटरेसी की बात कर रहे हैं, यानी मृत्यु साक्षरता की, तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या ये जो नई पीढ़ी है ये अभी भी पारंपरिक संस्कारों को अपना रही है ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय समुदाय की यदि मैं बात करूं, या फिर अब आधुनिक और सरल रूप से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगे हैं लोग?
इट्स अ न्यू पॉपुलेशन, द यंग इमिग्रेशन पॉपुलेशन, तो सो दे डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव नहीं है इसी ये मृत्यु का मामले में। तो हम कभी कभी ऐसे वर्कशॉप्स करते हैं जी, जो लोगों को यू नो एनलाइटन देम अबाउट व्हाट द रिचुअल्स आर, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन नॉट बी डन, प्रोसेस ऑफ डाइंग। और आजकल जो है वैड अभी है voluntary assisted dying, तो जो महारोग होता के से पीड़ित है वो दे कैन टेक voluntary assisted dying एंड यू नो euthanasia।
ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पर अलग अलग समुदाय संस्कृति के लोग हैं, तो क्या ऐसे में अन्य संस्कृतियों की मृत्यु संबंधी परंपराओं के प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ रहा है?
I don't really know what with the other communities, but in the Indian community we do find that some people are adopting more Western practices. जैसे हम जो है हमारे धर्म के अनुसार स्मशान भूमि में हम कभी खाते नहीं, और नॉन हिंदू लोग जो हैं वो खाते हैं, एक they have a reception. तो आजकल हिंदू लोग भी दाह संस्कार के बाद reception करते हैं, and हम जब किसी श्मशान में जाते हैं तो हम केवल सफेद कपड़े पहनते हैं, और ये कपड़े जो हैं हल्का कपड़े जो जब हम घर को वापस आते हैं तो उसको धो लेते हैं या फेंक लेते हैं। तो आजकल लोग सूट बूट पहन के आ जाते हैं।
यदि ऐसा होता है कि कोई अस्थाई रूप से आ रहा है, यानी टूरिस्ट वीजा पे आ रहा है या एज अ माइग्रेंट आ रहा है, और किसी भी वजह से उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किसी तरह की सहायता है? इज देयर लाइक अ बॉडी वेयर दे कैन गो एंड फिगर आउट कि इस संदर्भ में अब आगे क्या करना है, वित्तीय सहायता कैसे आएगी या मेडिकल असिस्टेंस कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो भारत से काफी अलग होता होगा?
ऐसे है कि ऑस्ट्रेलियन हिंदू काउंसिल दे हैव अ फंड दैट पीपल कैन एक्सेस फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ द बॉडी टू इंडिया। और यहाँ के एक आदमी है जो इस पर he concentrates on that, that is his focus. He can be contacted through the Australian Hindu Council, and they will arrange either for the body to be repatriated to India or have it cremated here and then the ashes go back to India. So there is provision. We have worked on that, and we have had quite a few bodies have been repatriated to India successfully, but the process is quite expensive.
आपके हिसाब से सरकार और जो समुदाय है वो किस तरह के कदम उठा सकता है कि इस विषय में संपूर्ण और सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, उनके पास कोई जरिया हो ये जानने का कि जिस प्रक्रिया को वो अपना रहे हैं वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से सही है।
पहले कदम जो है उसको एजुकेशन, तो लोगों को एजुकेट करना है, और वैसा वी आर ऑलरेडी एजुकेटिंग द फ्यूनरल डायरेक्टर्स। वी हैड अ वर्कशॉप व्हेन वी एस्टैब्लिश्ड द लोटस पवेलियन एट मैक्वारी पार्क। वी डिड अ वर्कशॉप फॉर ऑल द फ्यूनरल डायरेक्टर्स कि हम हिंदू मृत्यु मृत्यु होने के बाद क्या किया जाता है। What are the riti rivas to, for example, how to wash the body, how to dress the body, and what is required for the funeral to take place. So we've been educating them. And the other factor is that now, because we are about 1 million in Australia, so the government is taking greater note of our needs, and they are, we are in intensive discussions with all levels of government on how to facilitate the process in Australia. And because one of the other problems is we prefer to cremate as soon as possible after death, and sometimes if a person has not seen a doctor for 6 months, then it goes for autopsy. Gee. And that can sometimes take up to a week. So that's not good for us, because we need to begin the all the ceremonies, mourning ceremonies and everything. So we are trying to speed that time up, and the government agencies are listening to us. And furthermore, we are planning to have a seminar on death and dying for the community. But Bhavya, as you well know, Hindus are very superstitious people. So if you ask them to come for a seminar on weddings, there'll be or money making investment seminars, then they'll come. But if you ask them to come to a seminar on मृत्यु अंत्येष्टि संस्कार तो बहुत कम लोग आ जाएंगे।
तो आचार्य जी, आपका आज SBS हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और इस संदर्भ में हमें और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
इस अंश में प्रस्तुत की गई सभी जानकारी व्यक्तिगत है, SBS न तो इससे सहमत है और न ही असहमत। SBS न्यूज के लिए इस खबर को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
तो आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट में दी गई सभी तरह की जो जानकारी है वो व्यक्तिगत है, विचार है वो व्यक्तिगत है, इससे SBS हिंदी ना तो सहमत है और ना ही असहमत है। तो बताइएगा मैसेज करके कि कैसा लगा आपको हमारा आज का शो, क्या प्लान है आपके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है कल, काफी महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, हैलोवीन भी है भाई, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, तो कैसे मनाएंगे आप अपने बच्चों के साथ हैलोवीन भी, और उसके बाद वीकेंड भी शुरू हो जाएगा, तो किस तरह से तैयारी हो रही है जरूर बताइए हमें। इसी के साथ वक्त चला है आपसे विदा लेने का, जा रहे हैं इस वादे के साथ, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, SBS हिंदी के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए और आगे बढ़ते रहिए, इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहती हूँ, नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।